नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते 3-4 फिल्में आईं बॉलीवुड की, लेकिन देखने नहीं गया। चीट इंडिया थी, फ्रॉड सैया थी अरशद वारसी की, गोविंदा की फिल्म थी रंगीला राजा, और राधिका आप्टे और दूसरे कलाकारों की फिल्म थी बॉम्बेरिया। तो 4 फिल्में आईं, देखने नहीं गया। लेकिन बॉलीवुड का एक गाना है ना कि दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। तो वक्त गुजारने के लिए फिल्में चाहिए, और इस बार का जो हफ्ता रहा वो हफ्ता मोबाइल और स्ट्रीमिंग की दुनिया में ही रहा, मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रहा, और वहीं पर फिल्में देखी गईं। 4 फिल्में देखी गईं। तो 4 फिल्मों में जो फिल्में देखी गईं वो थी लॉयन, एक फिल्म है रेस जो बायोपिक है, एक ओलंपिक मैराथन दौड़ने वाले, मैराथन नहीं दौड़ा था शायद, उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ा था। और ये हिटलर के ज़माने की फिल्म है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, बहरहाल उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो लायन, रेस, और तीसरी फिल्म थी माजिद मजीदी की फिल्म थी, वो मैंने देखी नहीं थी, बियॉन्ड द क्लाउड, और एक और फिल्म है हल्का। ये 4 फिल्में देखी गई हैं इस बार, 5वीं फिल्म देख रहा हूँ लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो फिल्म मैं अभी मैंने छोड़ दी है। वो फिल्म है मोहम्मद अली की बायोपिक जिसे विल स्मिथ ने किया है। तो हम बात करेंगे आज लॉयन की। लॉयन बायोपिक है और ये फिल्म 2016 में आई थी और इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा गया, वेस्ट में लिखा पढ़ा गया, भारत में भी एक दो साइट्स वेबसाइट्स ने इसको कवर किया, लेकिन ये उस तरह की बड़ी खबर नहीं बनी। और मुझे खुद नहीं मालूम था इस फिल्म के बारे में, हालांकि इस फिल्म को बाफ्टा में बहुत सारे अवार्ड मिले, ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी कई कैटेगरीज में नॉमिनेट की गई थी, लेकिन मैं जानता नहीं था। और नेटफ्लिक्स पर ऐसे ही मैंने बायोपिक्स ढूंढा और उसमें मुझे ये फिल्म मिल गई और मैं देखने लगा। तो फिल्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा, जो अपना अनुभव रहा इस फिल्म को लेकर के, मैं पहले उसके बारे में बात करूँगा। फिल्म मैंने देखी और लगभग इसी तरह की कहानी, मतलब ये 2010 का समय रहा होगा, मैं उस वक्त नागपुर में था और लोकमत पे मैं एज ए रिपोर्टर काम करता था और मेरे जिम में एक बीट हुआ करती थी। तो इस तरह की कहानी जो लाइन में कहानी दिखाई गई है, तो उस तरह की कहानी से मेरा सबका बहुत साल पहले पढ़ चुका था। हालांकि दोनों कहानियों में बहुत सारा अंतर है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि यूरोपियन कंट्रीज और वेस्ट कंट्रीज से बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत से बच्चों को एडॉप्ट किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं नागपुर में था और मैं एक बीट कवर करता था पंचशील चौराहे पर, वहाँ पर पंचशील चौक आप कहिए, चौराहा वहाँ नहीं बोलते हैं, चौक बोलते हैं। तो पंचशील चौक पर वहाँ पर प्रेस क्लब हुआ करता है, पत्रकार परिषद जिसको वहाँ बोलते हैं। तो पत्रकार परिषद की मेरी एक बीट थी और 5 से लेकर के 7 के बीच में वहाँ पर सरकारी टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो वहाँ कई सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिनमें बड़े लीड थे और बाद में मैंने उन पर कुछ स्टोरीज की, उसमें से एक कहानी तृष्णा फ्रेंस्ट्रा की थी। तृष्णा फ्रेंस्ट्रा हॉलैंड में रहती हैं और भारत की हैं, वो एक अनाथ लड़की थी जिन्हें हॉलैंड के एक कपल ने अडॉप्ट किया था, और करीब 20-20 साल बाद वो इंडिया आई थी। उनका एक फाउंडेशन भी है, तृष्णा फाउंडेशन करके, और नागपुर में बहुत सारे एनजीओ हैं। तो एक एनजीओ ने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपनी वो पूरी फैमिली के साथ आई थी। हालांकि जो मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ और तृष्णा फ्रेंस्ट्रा की जो बात मैं कर रहा हूँ, दोनों की कहानियों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन लायन की कहानी भी एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जिसे एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने एडॉप्ट किया है, और उसकी वो पूरी जर्नी है, और भारत को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, उसकी जो अपनी स्मृतियां हैं, उसकी उहापोह को लेकर के एक कहानी बुनी गई है। तो चलिए मैं आज आपको लायन के बारे में बताता हूँ। ये फिल्म देव पटेल और सनी पवार ने, जो देव पटेल का किरदार रहता है शेरू, पहले शेरू और बाद में शेरू बियरली, तो शेरू बियरली का किरदार देव पटेल ने किया है, और शेरू जो उसके बचपन का किरदार है उसको सनी पवार ने किया है। बहुत लाजवाब किरदार उन्होंने निभाया है। तो शेरू मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बहुत ही मामूली से मुस्लिम परिवार का बच्चा रहता है। उसकी उम्र करीब 5 साल रहती है। उसकी माँ है, उसका एक बड़ा भाई है गुड्डू, और उसकी एक बहन है शकीला, और उनका परिवार खंडवा में रहता है। भाई ट्रेनों में साफ सफाई का काम करता है, मतलब आपने देखा होगा कि भारतीय ट्रेनों में कुछ बहुत सारे बच्चे आपको 15-16 साल तक के दिख जाते होंगे जो फर्श साफ किया करते हैं और बदले में लोगों से पैसे मांगते हैं, तो वो वही काम करता है शायद। और उसकी माँ है जो शेरू की, वो एक खदान में एक स्टोन माइनिंग वहाँ पर काम करती है, प्लांट है पत्थरों को तोड़ने का और उनको उठाने का काम करता है। तो शेरू बहुत ही गरीब परिवार से है, और उसे उसकी माँ, उसका भाई बहुत प्यार करता है। माँ अपने बेटे को, शेरू को छोड़ करके जाती है, और गुड्डू को बोलती है कि वो सबका ख्याल रखेगा। गुड्डू जो बड़ा भाई है उसका, उसे भी काम पर जाना रहता है, तो एक दिन वो निकलने के लिए चल देता है। वो खंडवा से बुरहानपुर तक ट्रेनों में सफ़र करता है और पोर्टिंग का काम करता है, फर्श साफ करता है। तो शेरू से जिद करने लगता है कि मैं भी चलूँगा। गुड्डू से मना करता है कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, वो शेरू की उम्र 5 साल है करीब, तो उसे मना करता है कि तुम अभी काम पर जाने लायक नहीं हो। लेकिन वो जिद करता है और बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं वजन उठा सकता हूँ, साइकिल वाइकल और तमाम, वो बच्चा जैसे बच्चे करते हैं, जिद करते हैं वैसे उठा करके दिखाता है। तो अंत में गुड्डू को लगता है कि ये नहीं मानेगा, तो उसको साथ लेकर के चल देता है। ट्रेन से वो खंडवा पहुँचते हैं और वहाँ पर गुड्डू उसको लेकर के उतरता है शेरू को। शेरू ट्रेन में ही सो जाता है, वो गोंदी में लेकर के उसको उतरता है और बहुत जगाने की कोशिश करता है, लेकिन शेरू नींद से जगता नहीं है। तो गुड्डू उसको बोलता है कि यार मैं इसीलिए तुम्हें नहीं ला रहा था क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम इस तरह से काम करने लायक नहीं हो। तो एक प्रॉमिस के साथ में गुड्डू शेरू को बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम यहीं स्टेशन पर बेंच पर सोते रहो और कहीं जाना मत, मैं लौट करके आता हूँ। और गुड्डू निकल जाता है। इसके बाद शेरू, एक ट्रेन वहाँ पर खड़ी रहती है, उसकी जब नींद खुलती है तो एक ट्रेन खड़ी रहती है और उसके अंदर बैठ जाता है, घूमता है, खेलता वेलता है, और कुछ देर बाद वो सो जाता है और ट्रेन चल देती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे बंद हैं ट्रेन के, और ट्रेन भागती रहती है। वो बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होता है, और वो कोलकाता पहुंच जाता है, एक ऐसे देश में जहाँ की भाषा, संस्कृति, जहाँ के लोगों को, उसकी उम्र भी नहीं रहती है कि वो तमाम चीज़ों की उसको जानकारी हो, और कोलकाता पहुंच जाता है। कोलकाता में उसे तमाम दिक्कतों का, 5 साल के बच्चे को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो स्टेशन पर लोगों से बोलता है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, उसको झड़का जाता है। फिर वो भूख से परेशान है, और सड़क पर घूमने वाले जो लावारिस बच्चे हैं उनका उसको साथ मिलता है, उनके साथ जाता है। फिर वहाँ पर ये देखने में आता है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग्स हैं, जो बच्चों को उठाते हैं और उनकी तस्करी करते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं और शेरू उनसे बच बचा करके किसी तरह निकलता है। तो फिर वो एक महिला के जाल में फंस जाता है और महिला संभवतः यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शेरू को बेचने की कोशिश करती है। वहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस है, वो आते हैं और वो संभवतः महिला के जरिए उस बच्चे को बेचने के बारे में प्लान करते हैं, लेकिन शेरू भाप जाता है और शेरू वहाँ से भी निकल करके भाग जाता है। वो एक कोलकाता की किसी गली पर, किसी फुटपाथ पर पड़ा रहता है। इस दौरान एक कोई सहृदय युवा है जो जिसकी नज़र शेरू पर पड़ती है और वो उसको लेकर के पुलिस के पास पहुंचता है, थाने में शिकायत कराता है और तमाम तफ्तीश होती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है कि शेरू है कहाँ का, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि उसका गांव कहाँ है, उसका घर कहाँ है, उसका ज़िला कहाँ है, उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसी दुनिया में फंस चुका रहता है जहाँ से एक उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल सा है, और इसी दौर में वो एक अनाथ आश्रम में पहुँचता है जहाँ पर दीप्ति नौल का एक छोटा सा किरदार है जो बच्चों को, जो लोग फॉरेनर्स जो एडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए काम करती हैं, और ऐसे अनाथ बच्चों को ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचाती हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत रहती है। तो शेरू में एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तस्मानिया में रहता है, बहुत ठीक ठाक कपल है, वो शेरू को अडॉप्ट करने के लिए आगे आते हैं। इस तरह शेरू कोलकाता से, खंडवा से कोलकाता और कोलकाता से तस्मानिया पहुंच जाता है। तस्मानिया में चूंकि फैमिली बहुत अच्छी है, जो दोनों उसके माँ बाप हैं जिन्होंने उसको एडॉप्ट किया है, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं और शेरू बहुत ही जल्द उनके साथ घुल मिल जाता है। तो कहानी दो हिस्सों में है। कहानी यह है कि जो 5 साल का बच्चा है खंडवा से निकल करके कैसे ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तक पहुँचता है, और उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है। मतलब इस कहानी में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक उस बच्चे के कहानी में बच्चे का रोल सनी पवार ने किया है, बहुत ही प्रभावी रोल किया है। मतलब आप देखेंगे तो हिला देने वाले आपको सीन नजर आएंगे, और अभिनय, मतलब एक छोटा सा बच्चा इतना कमाल का अभिनय और इतना मौलिक सीन्स आपको देखने को मिलेगा कि आमतौर पर हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में जो मुख्यधारा का सिनेमा है उसमें इस तरह से चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। और फिर कहानी का एक दूसरा हिस्सा शुरू होता है जिसमें शेरू बड़ा हो जाता है और 25 साल का एक नौजवान हो जाता है जिसका रोल देव पटेल ने किया है। वो हिस्सा भी बहुत ही शानदार है और देव पटेल ने भी बहुत ही शानदार काम किया है। तो फिर 25 साल बाद कहानी शुरू होती है कि शेरू बड़ा हो चुका है और शेरू की अपनी जो स्मृतियां हैं वो ख़त्म नहीं हैं। मतलब 5 साल तक जो खंडवा से निकल करके कोलकाता पहुंचने तक की उसकी अपनी जो स्मृतियां हैं, उसकी स्मृतियों में जो उसके माँ की छवि है, उसके स्मृतियों में जो उसके भाई की छवि है, उसका प्यार है और जो परिवार है उन 2-3 लोगों का, वो उसके जहन में कहीं ना कहीं बसा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो एक्चुअल में है कहाँ का और कहाँ से कैसे कोलकाता पहुँच गया। इसी दौरान वो पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन के लिए जाता है जहाँ पर कुछ इंडियंस उसके दोस्त मिलते हैं और वहाँ पर वो जलेबी का प्रसंग आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। वो जलेबी देखता है और उसके दिमाग में जो उसके अपनी बचपन की स्मृतियाँ हैं वो बहुत ही हावी हो जाती हैं और अपने दोस्तों को बताता है कि एक्चुअली में वो लॉस्ट है और खो गया था अपने परिवार से और उसे अडॉप्ट किया गया है, उसे नहीं मालूम है कि वो कहाँ का है, भारत में कहाँ से है। और हालांकि उसे, वो अपने परिवार से मिलना चाहता है, वो अपनी माँ अपने भाई से मिलना चाहता है, तो उसके दोस्त उसको सलाह देते हैं कि गूगल अर्थ की मदद से वो अपने परिवार को ढूंढ सकता है और परिवार से मिल सकता है। तो शेरू लग जाता है और गूगल की मदद से वो मैपिंग करता है उन जगहों की जो उसकी स्मृतियों में है। वो कोलकाता से खंडवा तक, मतलब जो उसने सफ़र जितने घंटों में तय किया था वो तमाम ट्रेनों के रूट देखता है, तमाम पैसेंजर्स की स्पीड देखता है और उसके आधार पर एक कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता है कि कोलकाता से कितनी दूर पर, कितने किलोमीटर पर या कितने घंटे की दूरी पर वो जगह है जहाँ से वो आया हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कहीं पहुँच नहीं पाता है, किसी बिंदु पर पहुँच नहीं पाता है। वो तमाम तमाम भारत की तमाम कोलकाता से करीब 1600 किलोमीटर दूर तक की तमाम जगहों को मार्क करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। इस बीच उसकी जो जिन्होंने उसको एडॉप्ट किया है वे लोग भी हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा भारत जाने की कोशिश कर रहा है या उनका बेटा अपनी जड़ों की ओर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, उसकी माँ खास तौर से परेशान होती है और एक द्वंद्व वहाँ पर उभरता है कि एक परिवार है जिसने उसको पाल पोस करके 20 साल तक बड़ा किया है और एक ऐसा परिवार है जहाँ 5 साल तक वो जिसने जन्म लिया है और 5 साल तक की जहाँ उसके दिमाग में स्मृतियाँ हैं। तो दोनों के बीच का जो आपसी खींचतान है, जो दोनों के बीच का जो अपना द्वंद्व है, उसे बहुत ही शानदार तरीके से देव पटेल ने निभाया है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उनकी एक्टिंग की वो कम नहीं है और उनकी अपनी जो स्मृतियाँ रहती हैं शेरू बेयरली की, जो अपनी स्मृतियाँ रहती हैं 25 साल की उम्र में, उतनी हावी हो जाती हैं कि उनका अपना जो निजी जीवन है, ऑस्ट्रेलिया का जो मौजूदा जीवन है, उस पर वो हावी होता दिखता है। उनकी गर्लफ्रेंड है उससे, मतलब वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और बार बार हर जगह उन्हें उनके 5 साल की उम्र की स्मृतियों के पास ले जा करके खड़ा कर देती है। बहरहाल ऐसे ही एक रात में वो फ्रस्ट्रेट से अपने घर पर पहुंचे रहते हैं और तमाम मैप वैप जो उन्होंने अपने कमरे में लगाया हुआ है उसको उखाड़ फुखाड़ कर फेंक देते हैं और लैपटॉप पर गूगल अर्थ पर कटफुट तमाम चीज़ें सर्च करते रहते हैं और अचानक से पानी की टंकी और लोकेशन के जरिए वो गूगल अर्थ के जरिए वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये जगह है जहाँ से मैं निकला था। बहरहाल जब वो ढूंढ लेते हैं तो अपनी माँ को बताते हैं और अपनी प्रेमिका को भी बताते हैं और तब राजी खुशी उनको बोलते हैं कि वो जाएं और वो वहाँ से निकलते हैं, उस जगह पहुँचते हैं और अपनी माँ और अपने घर तक पहुँचते हैं और घर से मिलते हैं। लेकिन घर पहुँच करके पता चलता है कि उनका भाई गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं है और बहुत ही भावुक दृश्य हैं जब आप देखेंगे कि गुड्डू जब खंडवा पहुंचता है और खंडवा से अपने माँ, अपनी बहन और अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले में जब वो गुजरता है उन रास्तों से जिन रास्तों पर वो 5 साल की उम्र में चला है, तो बहुत ही भावुक दृश्य है। बहरहाल तो इस तरह से शेरू बेयरली अपने घर, अपनी माँ जिसने उसे जन्म दिया है, अपने परिवार और अपने उस मोहल्ले में जहाँ उसका बचपन 5 साल तक बीता, वहाँ पर पहुँच जाता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये सच्ची कहानी है। शेरू बेयरली ऑस्ट्रेलिया के एक तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया के एक बिजनेसमैन है, उनकी ये सच्ची कहानी है और उन्होंने इसी टाइटल से आई, उन्होंने मतलब अपने इसी जर्नी पर, ऑस्ट्रेलिया से खंडवा तक की जर्नी पर उन्होंने कैसे घर ढूंढा, उन्होंने एक किताब लिखी थी। ये किताब 2012 या 13 में आई थी और काफ़ी पॉपुलर हुई थी और इसी किताब पर फिल्म की उनकी कहानी बनाई गई है। मज़ेदार चीज़ यह है कि भारत में तो इतना नहीं देखने को मिला लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है और जो विदेशी मीडिया है उसने इस फिल्म को बहुत ही प्रमुखता से इसको कवर किया था और उन्होंने इसको काफ़ी अच्छी फिल्म के तौर पर शुमार किया, ख़ास तौर से फिल्म की कहानी, फिल्म में सितारों का जो अपना अभिनय रहा है उसकी बहुत ही तारीफ की गई थी। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वैरायटी और जो दूसरे और तमाम बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है, उन्होंने भी फिल्म की बहुत अच्छी समीक्षा की थी। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी समीक्षा में इस बात का भी, इस मुद्दे को भी उठाया कि फिल्म एक तरीके से कॉर्पोरेट प्रोपगेंडा को बढ़ावा देती है, और कॉर्पोरेट प्रोपगेंडा इस तरह से कि गूगल अर्थ का जिस तरह से इसमें दिखाया गया है, कैसे गूगल अर्थ एक 20 साल बाद एक आदमी को, एक एक शख्स को अपने परिवार से मिलवाने में सहायक होती है, तो उसको लेकर के उन्होंने आलोचना की है कि ये कॉर्पोरेट प्रोपगेंडा है जो चीज़ों को अपने तरीके से प्रभावित कर रही है। हालांकि उन्होंने माना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा में ये माना गया है कि टेक्नोलॉजी ने जीवन को काफ़ी सहज बनाया है, इस तरह से जैसे शेरू ब्रियरली की लाइफ में देखने को मिला, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वो तमाम चीज़ें खत्म भी हुई हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। बहरहाल तो ये एक अच्छी फिल्म है और मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी थी, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और एक अच्छी कहानी आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें दो चीज़ें जो मतलब हिंदी सिनेमा के जो ट्रेडिशनल व्यूअर हैं उनके लिए एक दिक्कत वाली बात यह है कि पहला हाफ फिल्म का जो है वो बहुत ही डार्क है, और कई बार आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है क्या, और बहुत सारे रियल फुटेज और बहुत बहुत सारा यथार्थ जिस तरीके से दिखाया गया है कि फुटपाथ की लाइफ, एक मजदूर की लाइफ और कैसे बच्चे सरवाइव करते हैं सड़कों पर, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं क्या, लेकिन फिल्म के कथानक में और फिल्म के दृश्यों में इतनी ताकत है कि आपको बोर नहीं करेगी, भले आपको पसंद ना आए लेकिन आपको बोर नहीं करेगी। और जब आप दूसरे हाफ में जब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है स्टोरी, उसके बाद तो फिल्म बहुत ही कमाल की है, मतलब उसमें इतने इमोशंस हैं और कहानी इस तरह से है, अभिनय इस तरह से है, और द्वंद्व जो किरदारों के अपने जो द्वंद्व हैं वो इस तरह से हैं कि आप उससे हट नहीं सकते हैं और आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो शेरू की माँ का रोल, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, तो शेरू का जो रोल है देव पटेल को, उसके लिए बाफ्टा से अवार्ड भी मिला था। हालांकि ऑस्कर में नॉमिनेशन पाने के बावजूद ये फिल्म वहाँ पर कई कैटेगरी में, करीब 3 या 4 कैटेगरी में ऑस्कर में नॉमिनेट की गई थी ये फिल्म, लेकिन इसको अवार्ड वहाँ पर नहीं मिला था, बावजूद बाफ्टा और यूएस के बहुत सारे ऐसे सिनेमा के जो बड़े अवार्ड हैं वहाँ पर फिल्म ये गई थी और इस फिल्म को सम्मान मिला भी। ये बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, आपको बता दें कि इसका निर्देशन यानी डायरेक्शन गार्थ डेविस का है, और इसे लिखा था किताब, हालांकि ये ए लॉन्ग वे होम जो शेरू ब्रियरली की किताब है उस पर आधारित है, लेकिन फिल्म की कहानी लिखी थी किताब के आधार पर ल्यूक डेविस ने। और फिल्म में देव पटेल के अलावा रोनी मारा, डेविड वेनहम, निकोल किडमैन, अभिषेक भराते ने गुड्डू जो शेरू के बचपन में बड़ा भाई है शेरू का, उसका रोल किया था। डिवियन लाडवा, ये एक दूसरा एडॉप्ट बच्चा है जो ऑस्ट्रेलियन कपल ने लिया था, उसका रोल किया था। प्रियंका बोस, ये शेरू की माँ का रोल था। दीप्ति नवल, तनिष्ठा चटर्जी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सनी पवार जिन्होंने 5 साल के बच्चे का वो किरदार निभाया है, ये सारे लोग आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, और मुझे लगता है कि अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर इस फिल्म को देखें, और एक ऐसे बच्चे की जर्नी जो सड़क से होते हुए तस्मानिया पहुंचता है, जिसकी स्मृतियों में कुछ है नहीं, और तस्मानिया से फिर 20 साल बाद वो चीज़ें उसके जहन में ताज़ा हैं, और कैसे वो गूगल अर्थ की मदद से अपने घर तक पहुंचता है, तो ये उसकी पूरी जर्नी देखने लायक है और देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म 118 मिनट की है और नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है। तो फिलहाल इतना ही, और आगे हम बात करेंगे रेस, जो ओलंपिक 1930 में एक ब्लैक ने चार गोल्ड जीते थे उसने, और कैसे उसकी जर्नी रही, तो हम उस पर बात करेंगे। और हम मोहम्मद अली पर भी बात करेंगे, जो विल स्मिथ की फिल्म है। ये दोनों बायोपिक फिल्में हैं। तो इस हफ्ते मैंने 3 बायोपिक फिल्में देखी हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।